राष्ट्रपति की चुनावों की स्टेजें, स्टेजेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 1952 में पास किए गए और 1974 और 1977 में संशोधन किए गए राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कानून, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट के निरीक्षण के अधीन राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के निम्नलिखित स्टेजें हैं। एक, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना, नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के निरीक्षण के अधीन होता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करने, जांच पड़ताल करने, वापस लेने, चुनाव तिथि और स्थान इत्यादि के संबंध में एक अधिसूचना जारी करता है। दो, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, नॉमिनेशन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। चुनाव आयोग राष्ट्रपति के चुनाव प्रबंध के लिए चुनाव अधिकारी और उसकी सहायता के लिए अलग अलग राज्यों में सहायक चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जुलाई 2012 में करवाए गए भारत के 13वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव श्री वी के अग्निहोत्री को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। तीन, नामांकन पत्र दाखिल करना, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। चुनाव अधिकारी नामांकन पत्र दाखिल करने और वापस लेने की घोषणा करता है और निश्चित तिथि को अलग अलग उम्मीदवार चुनाव अधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रूपये जमानत के रूप में जमा करवाने पड़ते हैं और उसके नामांकन को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित प्रपोज किया जाना और 50 मतदाताओं द्वारा उसका अनुमोदन सेकेंड किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित और अनुमोदन करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनाव मंडल के सदस्य होने चाहिए और एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित नहीं कर सकता। चार, नामांकन पत्रों की जांच, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। चुनाव अधिकारी सब उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करता है और देखता है कि उम्मीदवार उचित योग्यताएं रखता है, नामांकन पत्र ठीक तरह भरा हुआ है इत्यादि। नामांकन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी होने पर संबंधित उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाता है। पांच, मतदान, वोटिंग। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निश्चित तिथि को संसद के सदस्य दिल्ली में और राज्य विधानसभाओं के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में मत डालते हैं। संसद के सदस्य चुनाव आयोग की अग्रिम स्वीकृति से अपने राज्य की राजधानी में भी मत डाल सकते हैं। क, मत डालने का ढंग, मेथड ऑफ वोटिंग। मत पत्र पर उम्मीदवारों के नाम छपे होते हैं और मतदाता मत पत्र पर उतने अधिमान प्रेफरेंसेस प्रकट कर सकता है जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हों। ख, कोटा निश्चित करने का ढंग, मेथड टू फिक्स कोटा। राष्ट्रपति पद के लिए सफल उम्मीदवार को निश्चित कोटे के अनुसार मत प्राप्त करने पड़ते हैं। कोटा निम्नलिखित ढंग से निश्चित किया जाता है, कुल उचित मत उसको विभाजित किया स्थानों की संख्या जमा एक और उसका जो उत्तर आया उसमें जमा एक, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड इज इक्वल टू प्लस वन। उदाहरणतया यदि कुल उचित मतों की संख्या 20,000 है तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कोटा होगा 20,000 को विभाजित किया एक जमा एक और जो आया उत्तर उसमें जमा एक, ये बराबर हुआ 10,001।
पेज नंबर 129।
ग, मतगणना का ढंग, मेथड ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स। चुनाव के बाद उचित मतों वैलिड वोट्स की गणना की जाती है और ऊपर लिखित विधि के अनुसार कोटा निश्चित कर लिया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार की पहली पसंद की मतगणना की जाती है और यदि कोई उम्मीदवार पहली पसंद के मत निश्चित कोटे के अनुसार प्राप्त कर लेता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। परंतु यदि कोई उम्मीदवार भी निश्चित कोटे के अनुसार पहली पसंद के मत प्राप्त नहीं करता तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को असफल घोषित कर दिया जाता है और उसके मतों को उनके ऊपर दी गई दूसरी पसंद के आधार पर शेष उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है और यह क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कोई उम्मीदवार निश्चित कोटे के अनुसार मत प्राप्त नहीं कर लेता। भारत में आज तक केवल 1969 में चौथे राष्ट्रपति श्री बीवी गिरी के चुनाव के समय दूसरी पसंद की मतगणना की आवश्यकता पड़ी थी। सर्वसम्मति से चुना गया राष्ट्रपति यूनैनिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जुलाई 1977 में श्री नीलम संजीवा रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए थे। 6. मतगणना और परिणाम की घोषणा काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अलग अलग राज्यों से मत पेटियां बंद करके नई दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारी के पास भेज दी जाती हैं। वह निश्चित तिथि को पेटियां खोलता है और कोटे के अनुसार पहली पसंद के मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सफल घोषित कर देता है। 7. राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना ओथ टेकिंग बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को पद संभालने के समय संविधान की धारा 60 में अंकित शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और यदि किसी कारण मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो अगले वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने लेनी पड़ती है। मैं परमात्मा के नाम पर शपथ लेता हूं अथवा सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राष्ट्रपति के पद के कार्यों अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाऊंगा का वफादारी से पालन करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और कानून की रक्षा करूंगा तथा मैं अपने आप को भारत के लोगों की सेवा और कल्याण में लगाऊंगा। आई ए और बी डू सोलेमनली अफर्म सिवियर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलेमनली अफर्म दैट आई विल फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड दैट आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर्टिकल 60। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मतभेद डिस्प्यूट्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान की धारा 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मतभेद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। आज तक 1967 में डॉ. जाकिर हुसैन 1969 में श्री बीवी गिरी और 1982 में ज्ञानी जैल सिंह और 2012 में श्री प्रणव मुखर्जी के चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, परंतु तीनों चुनाव याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई थी। 1969 में श्री बीवी गिरी ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश होकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना स्थापित की।